From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the General Women's Session of the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Featured speakers...
इस सभा का संगीत प्राथमिक लड़कियां, जवान महिलाओं और सहायक संस्था की बहनों के गायक मंडली के द्वारा प्रदान किया जाए, जो 50 से ज्यादा देशों के भाषाओं और परंपराओं के को पेश करती हैं। दुनिया भर के महिलाओं, जवान महिलाओं और 8 साल के उम्र की लड़कियों और उससे ज्यादा के इकट्ठा हुए हैं गिरजाघर नेताओं के सलाह और शिक्षण प्राप्त करने के लिए। प्राथमिक रोजमेरी एम विक्सन कंडक्ट करेंगी। बहनों, आपको स्वागत करते हैं यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का के 186 महामहिलाओं की सभा में। हम आभारी हैं इस सम्मेलन केंद्र सॉल्ट लेक सिटी यूटा में इकट्ठा हुए और प्रसन्न हैं जानने में कि बहनों एक साथ इकट्ठा हुए हैं कई सभा की जगह दुनिया भर में। हम आपको प्यार करते हैं और आपके उपस्थिति के लिए आभारी हैं। हम उन लोगों को भी जो दूसरे विश्वासी को आभार और स्वागत करते हैं जो हमारे साथ रात हैं। प्रधान थॉमस एस मॉन्सन ने जो इस सम्मेलन का नेतृत्व कर रहे हैं ने कहा कि मैं इस सभा को संचालन करूं। हम आभारी हैं प्रधान मॉन्सन और उनके सलाहकारों का, प्रधान आयरिंग और प्रधान उक्टर जो आज हमारे साथ इस रात हैं। हम एल्डर जेफरी आर हॉलैंड, डी टॉड क्रिस्टोफर्सन और रोनल्ड ए रैसबर्न जो 12 देवदूत के चेलापन को भी आभार व्यक्त करते हैं और बिशप जेराल्ड कोसे जो गिरजाघर के प्रेजाइडिंग बिशप हैं और साथ में भी प्राथमिक जवान महिलाओं और सहायक संस्था के महाअध्यक्षताओं के साथ में उनकी विशेष जनरल बोर्ड के सदस्य भी हैं। हम इसे महान आशीर्वाद मानते हैं दूसरे के साथ सेवा करने में इस महान कार्य में। इस सभा के संगीत प्राथमिक लड़कियों, जवान महिलाओं और सहायक संस्था बहनों के गायक मंडली द्वारा दी जाएगी जो 50 अलग देशों के भाषाओं और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। गायक मंडली दुनिया भर में जो एकता हम परमेश्वर की पुत्रियां महसूस करती हैं यीशु मसीह के सुसमाचार में आज दिखलाएंगे। वो लिलियन सेवर्सन के निर्देशन पर गाएंगी और ऑर्गन पर साथ रहेगी लिंडा मार्गेट्स। गायक मंडली और सभा अब गाएंगे हैव आई डन एनी गुड। शुरुआत प्रार्थना मॉर्गन मनफर्ड, एक जवान महिला जो बॉनविल सेकेंड वार्ड सॉल्ट लेक बॉनविल स्टेक से है, द्वारा दी जाएगी।
हमारे प्रिय परमेश्वर, हम बहुत आभारी हैं आज यहाँ होने के लिए। हम एकत्रित हैं आपकी गिरजे की महिलाओं, हम बहुत आभारी हैं इस जगह में मैसेजेस को सुनने के लिए। हम बहुत आभारी हैं हमारे प्रिय प्रधान थॉमस एस मॉन्सन के लिए और हर महिला और मर्द के लिए जो हमें रास्ता दिखाते हैं। हम बहुत आभारी हैं हमारे कई आशीषों के लिए जो हम खुद आपसे अर्पित लेते हैं। हम सब हम आशीष मांगते हैं सब स्पीकरों के लिए और हम मांगते हैं कि हमारे दिलों आत्मा से भर जाएं और हम हमारे दुनिया में उनके मैसेजों को याद रख सकें। हम आपको प्यार करते हैं और आपके बेटे को प्यार करते हैं। हम बहुत आभारी हैं इस गिरजा के लिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
आज शाम की सभा में हम वीडियो भी देखेंगे जो हमारे सहायता दिखाता है। गिरजाघर की कोशिश में दुनिया के हजारों लोगों की मदद पर जो अपने घरों से भाग गए। ये वीडियो हमको दिखाता है कि कैसे हम यीशु मसीह की चेलापन की तरह से जो हमारे आसपास है को देख रहे हैं। हमारे साथ इस पहला वीडियो को देखो जिसके बाद में गायक मंडली मिलकर गाएंगे As I Have Loved You और I Am a Child of God, किस्टन टेनी के साथ जो वायलिन बजाएगी। फिर बहन शेरल ए एस्प्लिन प्राथमिक की महाअध्यक्षता की पहला सलाहकार भाषण देंगी।
During the long cold winter
1838 से 1839 तक का लंबा ठंडा सर्दी का मौसम का दौरान मिजूरी से निकलने जाने के बाद संतों को एहसास हुआ कि चाहे जहीं भी वो रुके वो उनका अपना घर ना होगा। जायन कितना शौक मनाता है, उसके बेटे रास्तों पर मारे गए हैं, दुश्मन के कठोर हाथों से उसके बेटियां खामोशी से रोती हैं। 5,000 से 7,000 पुरुष, महिला और बच्चे निकाले गए थे मसूरी के घरों और जमीनों से, गरीबी में कहीं और ही बसेरा ढूंढ कर रहने के लिए। लगभग 12 परिवार नदी पर करते क्विंसी तक हर दिन और लगभग 30 परिवार उस पार है ताकि वो इस ओर आ सके। क्विंसी के कृपालु नागरिक दया और भलाई दिखाते हैं हमारे दुख में। अगर इलिनॉय के लोगों के सहायता के काम ना होता कई सौ संत मर चुके होते। हम इस दया की उतना कदर करते हैं मानो अचानक दूत उस बड़े नदी के तट पर आ गए, भोजन और कपड़ा दुखित लोगों में बांटते हुए। जब एक भाई ने अपना घर दिया तूफान से शरण के लिए, कई रातों को बरामदे ऊपर और नीचे वाले इतने नजदीक रखे खाद से बिछे थे कि चलते समय पर किसी न किसी खत पर पड़ जाता। हमारे कुछ प्रिय भाई जो हमारे साथ जय जाकर और प्रार्थना करते थे अब मृत लोगों के साथ दफन है। कुछ लोग जो सकरे रास्ते पर कुछ महीने पहले अब अचंभ और दुख की बात है वो हमें छोड़कर भाग गए हैं। हमारे भविष्यवक्ता अब भी जेल में है और कई अन्य लोग जिन्हें हम प्रेम करते हैं। हमारी स्थिति को जब आप देखोगे तो लगेगा कि जायन नष्ट हो गया है, मगर ऐसा नहीं है। प्रभु का कार्य आगे बढ़ रहा है। प्रभु का आत्मा मेरे साथ तेरा था पिछले कुछ महीनों में जैसे पहले कभी नहीं हुआ, और भले ही मैंने बीमारियों की सेवा की रात और दिन, फिर भी मेरे स्वर्ग के पिता के साथ बात करने से मेरे कई घंटों का मेहनत और काम अच्छा लगने लगा। हमें हिम्मत और निर्दयता के साथ खड़े होना है, प्रभु में अपना भरोसा रखकर जो अंधेरे से शक्ति को नकाम और दूर कर देगा। विरोध के समय खुश रहो, रास्तों में कमजोर ना हो जाओ। मैं जानता हूँ मार्ग सकरा और सीधा है हमारे जैसे थके हुए यात्रियों के लिए, और सिर्फ कभी कभी हमें एक मुसाफिर मिल जाता है साथ देने के लिए, मगर प्रभु हमें सुरक्षित अंत तक पहुँचाएगा।
Love one another.
एक दूसरे से प्यार करना जैसे कि मैं आपको प्यार करता हूँ. उनके महान प्रेषित बलिदान से कुछ घंटे पहले ही यीशु के शब्द थे. एक बलिदान जो एल्डर जेफ्री आर हॉलैंड ने समझाया जैसे कि एक महान विश्वरूप सच्चा प्यार का जो इस दुनिया की इतिहास में प्रमाणित किया गया है. यीशु सिर्फ हमें प्यार करना नहीं सिखलाया मगर उसने जिया जो उसने सिखलाया. उनके द्वारा देखरेख में यीशु अच्छे कार्य करते गए और विनती किया कि सब को उसकी उदाहरण का पालन करें. उसने सिखलाया क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा. प्रधान थॉमस एस मॉन्सन ने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि उद्धारकर्ता ने हमको बताया है कि जब तक हम अपने आप को दूसरों की सेवा करने में खो नहीं दे, हमारे जीवन का कोई मोल नहीं होगा. जो लोग अपने लिए जीते अंत में मुरझा जाते हैं, अपने जीवन को खो देते हैं, और वे जो अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देते हैं बढ़ते और तरक्की करते हैं और अपने जीवन को बचा लेते हैं. आत्मत्यागी और दूसरे पर विचार करना सच्चा ईसाई सेवा है. एक महिला जो अपने बीमार पति का देखभाल करती थी ने समझाया, ये मत सोचना कि तुम्हारा कार्य एक भोज है, ये सोचिए कि वह एक मौका है सच्चा प्यार सीखने के लिए. BYU का धार्मिक सभा में देते हुए सिस्टर सॉन्ड्रा डी हिस्टन ने पूछा, कैसा होता है अगर हम दूसरे के हृदय में देख सकते, क्या हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, दूसरे की भावना को महसूस कर सकते, देख सकते जो दूसरे देखते हैं और सुन सकते जो दूसरे सुनते हैं, क्या हम बना सकते हैं और ले सकते जो मौका दूसरे को सेवा करने में, और क्या हम उनको अलग से पेश आते. बहन हिस्टन ने एक एक्सपीरियंस बताया, हमारे एक धार्मिक सभा बोलने वाला ने हमको कैसा बनना है सिखलाया. उनकी एक विवरण थी, वैसा बनो जो दूसरों के पास पहुंचता है और दूसरों को सेवा करता है. इसको प्रदर्शन करने में उसने एक जीवन महिला को आगे बुलाया और उसे कहा कि वो उसकी ओर खड़े हो. उसने तब तक शीशा लिया और जवान महिला और उसके बीच में रखा. फिर उसने शीशे को दूर रखा और खिड़की को बनावट निकाला और अपने चेहरे और जवान महिला के चेहरे के बीच में रखा. प्राय में हमने यह देख पाया कि जवान महिला ने उसमें ध्यान लगाया देखने में, और यह है कि सच्चा सेवा चाहते कि हम दूसरे की जरूरतमंद और तरंग भाव पर ध्यान दें. प्राय में हम अपने बारे में अपनी खुद जीवन की करियकरत पर चिंताता करते हैं, जैसे कि हम शीशे में देखते हैं मौका के लिए सेवा करने में जो हम अच्छे से नहीं देख पाते सेवा की खिड़की में. प्रधान मॉन्सन ने हमको कई बार याद दिलाया कि हमारे घिरे में वो लोग हैं जो हमारे तवज्जो, हमारा साहस भरवा, हमारा अलाम्बन, हमारे आरामा पुछाने में हमारे दयालु की जरूरत है, और ये है परिवार की सदस्य, दोस्त, लोग जो हम जान पहचान करते हैं या अजनबी. पिछले साल जनवरी में फ्रेंड और लिया होना के मैगजीन में निमंत्रण किया गया दुनिया भर के बच्चों को कि वे प्रधान मॉन्सन के उपदेश को पालन करें कि प्रभु के हाथ बनो. बच्चों को निमंत्रण दिया गया कि वे सेवा की कार्यों को करें, बड़े और छोटे. उनके प्रोत्साहित किया गया कि वो अपने हाथों को एक पेपर पर ट्रेस करें, काट कर वहां लिखें जो सेवा उसने किया और मैगजीन पर भेजें. बहुत से लोग जो आज रात सुन रहे हैं, शायद वो हजारों में से कई बच्चे थे जो दयालु सेवा किया और भेजा था. जब बच्चे छोटे से प्यार और दूसरे को सेवा करने में खो सकते हैं, वो एक सेवा की अभ्यास को शुरू करते हैं। अक्सर में बच्चे हम सबको सिखाते हैं कि प्यार को दिखाने में और सेवा करने में उतना बड़ा नहीं होना चाहिए और प्रभावशाली की भी मतलब और फर्क में। एक प्राथमिक अध्यापिका ने यह उदाहरण को बताया। आज उसने कहा, हमारे 5 और 6 साल के बच्चों ने प्यार का माला बनाया है। हर एक बच्चे ने पेपर पर तस्वीर बनाई अपने लिए, एक इशू के लिए और कई अपने परिवार के सदस्य के लिए और प्रियजन के लिए। हमने पेपर को स्ट्रिप के गोला में ग्लू किया और दूसरे पर देख सकते चेन को बनाने में, ताकि हम प्यार का माला बना सकें। जैसे कि वे बना रहे थे, बच्चे अपने परिवारों को बारे में बात कर रहे थे। हैदर ने कहा, मुझे लगता है कि मेरी बहन मुझे प्यार नहीं करती, हम हमेशा लड़ते हैं, मैं अपने आप को भी नहीं पसंद करती। और उसने अपने सिर को अपने हाथों में रखा। मैंने उसकी परिवार की परिस्थिति को सोचा और महसूस किया कि शायद उसका जीवन सचमुच ही कठिन है। बाद में जब हैदर ने बतलाया, एना जो टेबल के दूसरी तरफ बैठी थी कहा, हैदर मैं आपको अपने माले में रखूंगी मेरे और ईशु के बीच में, क्योंकि वो तुम्हें प्यार करते हैं और मैं भी तुमको प्यार करती हूँ। जब एना ने ऐसा कहा, हैदर ने टेबल से नीचे से जाकर एना को गाले लगा दिया। कक्षा के बाद जब उसकी नानी उसको लेने आई, हैदर ने कहा, विश्वास कीजिए नानी, यीशु मुझे प्यार करते हैं। जब हम प्यार और सेवा से दूसरों की ओर बढ़ते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, हृदय विनम्र होता है और बदलता है जब प्रभु से प्यार को महसूस करते हैं। कभी कभी जो अनगिनत ज़रूरतमंद लोग हैं उनके बोझ को हल्का करने बहुत कठिन होता है। बहनों, तुम में से कई जो सुनते हैं महसूस करोगे कि आप सब कुछ कर रहे हैं जो आप मुमकिन कर सकते हैं तुम्हारी परिवार सदस्यों को की देख रेख में जो ज़रूरतमंद है। याद रखिए, उन दिनचर्या में और साधारण कार्य पर तब तुम अपने परमेश्वर की सेवा करते हैं। हम सब हर रोज कुछ कुछ सेवा कर सकते हैं हमारे रोज की जीवन में। हम एक विवादपूर्ण दुनिया में रहते हैं। हम सेवा करते हैं जब हम दोष नहीं निकालते हैं, जब हम बुराई को इनकार करते हैं, जब हम रोकते हैं न्याय कारण में, जब हम मुस्कुराते, जब हम धन्यवाद करते हैं और जब हम धैर्य और दयालु होते हैं। दूसरे तरीके से सेवा समय लेती है, पूरे तौर से तैयारी करना और अधिक शक्ति, मगर वो हमारे हर कोशिश के लायक है। शायद हम शुरुआत से अपने से ये सवाल पूछ सकते हैं, मेरे नज़दीकी तौर पर में कौन है जिससे मैं मदद कर सकती हूँ, मेरे पास कितने समय और साधन हैं, मैं दूसरों की आशीष के लिए अपनी योग्यता और काबिलियत से क्या कर सकती हूँ, एक परिवार की तरह हम क्या कर सकते हैं। प्रेसिडेंट उडॉफ ने सिखलाया, आप वो जो कीजिए जो मसीह के चेला ने किया है हर युग में, साथ में सलाह करना, सब साधन को इस्तेमाल करना जो मौजूद है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा को ढूंढना। मैं आपको वादा करता हूं, उन्होंने कहा, अगर आप इस अभ्यास को आज्ञा करोगे, आपको जातीय बढ़क रक्षा मिलेगी, जैसे कि कौन, क्या, कब और कहां प्रभु के रास्ते को प्रदान कर। जब कभी मैं सोचता हूं कि कैसा होगा अब जब उद्धारकर्ता फिर से आएंगे, मैं उनका भेंट नीफाइट्स पर सोचता हूँ, जब उन्होंने पूछा, क्या कोई ऐसा भी है जो बीमार है, उसे यहाँ लाओ, तुम्हारे पास कोई लंगड़ा, अंधा या पंगू है, उसे यहाँ लाओ, उन्हें यहाँ लाओ और मैं उनको ठीक करूँगा, क्योंकि तुम पर मैं दया करता हूँ, मेरा प्याला दया से भर चुका है। उद्धारकर्ता ने सबको ठीक किया। अब के लिए वे हमें उनका हाथ बनने के लिए आदेश करते हैं। मैं अब जान पाई हूँ कि परमेश्वर और पड़ोसी के प्यार हमारे जीवन को अर्थ देता है। हम उद्धारकर्ता के मिसाल और आज्ञा पर चलें कि हम सभी की और प्यासे बढ़े। मैं प्रेसिडेंट आयरिंग के वादे की सच्चाई की गवाही देती हूँ, अगर इस्तेमाल करें अपनी तोहफे को दूसरों के लिए, हम महसूस करेंगे प्रभु का प्यार उसकी व्यक्ति पर, हम उसकी प्यार भी अपने और के लिए महसूस करेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
On a signal from the conductor,
सुचालक के निर्देशन पर हम आपको आमंत्रित करते हैं कि गायक मंडली के साथ गाएं स्वीट इज द वर्क। संगीत के बाद हम आभारी होंगे बहन नील एफ मैरियट, दूसरे सलाका जवान महिलाओं की महाअध्यक्षता से सुनेंगे। उसकी टिप्पणियों के बाद हम दूसरी वीडियो प्रस्तुत को देखेंगे बहन लिंडा के बर्टन, सहायक संस्था के महाप्रधान फिर हमको भाषण करेंगे।
Truly, sisters, sweet is the work.
हमारे प्यारे, मैं आज आपके साथ मेरी सोच बांटना चाहती हूँ। यीशु के जी उठने और ऊपर जाने के तुरंत बाद देवदूत पीतर ने सिखलाया, सभी जान ले निश्चय की ही कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वाले के हृदय चीत गए और वो पीतर और श्रेष्ठ प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? और उन्होंने उसी प्रकार पीतर के शिक्षण का खुशी से पालन किया। कल ईस्टर रविवार है और मुझे आशा है कि हमारे हृदय चीत गए हैं उद्धारकर्ता को मानने, पश्चाताप करने और खुशी से पालन करने के लिए। इस महासम्मेलन में हम प्रेरित निर्देशन को सुनेंगे गिरजाघर नेताओं की ओर से, दोनों पुरुष और महिला से। ये जानते हुए कि उनके शब्द हमें पसंद आएगी, मैं तुमसे आज रात तुमसे पूछती हूँ, महिलाओं और बहनें, हम क्या करें? सहायक संस्था मधा अध्यक्ष के हैसियत से एलाइजा आर स्नो ने घोषणा की, बहनों से 150 वर्ष पहले प्रभु ने हमें ऊंची जिम्मेदारियों सौंपी है। मैं गवाही देती हूं कि उसकी घोषणा आज भी सच है। प्रभु का गिरजाघर और राज्य को आत्मनिर्देशित महिलाओं की जरूरत है, जो अपने अनोखे उपहारन को इस्तेमाल करते हैं पोषण सच्चाई की ओर से बोलना और उसका रक्षा करने के लिए। हमारी प्रेरणा और अंतर्ज्ञान बहुमूल्य भाग है परमेश्वर का राज्य बनाने के लिए, जिसका मतलब है अपनी जिम्मेदारी करना परमेश्वर के बच्चों को उधार दिलाने के लिए। हम पोषण के जरिए राज्य को बनाते हैं। हम राज्यों को बनाते हैं जब हम औरों को पोषण करते हैं। हालांकि सबसे पहला परमेश्वर का बच्चा जिसे पुनर्स्थापित सुसमाचार में बढ़ाने हैं वो हम खुद हैं। एम्मा स्मिथ ने कहा, मेरी इच्छा है परमेश्वर के आत्मा से खुद को जानना और समझूं कि मैं उन परंपराओं या प्रकृति से हट सकूं जो मुझे अनंत जीवन ना दिला सके। हमें उदारकर्ता के सुसमाचार में ठोस विश्वास पैदा करना है। मंदिर के वादाओं से शक्ति पर पाकर अनंत की ओर। क्या होगा जब हमारे कुछ परंपरा का जगह यीशु मसीह के पुनर्स्थापित सुसमाचार में ना हो? उसने दूर जाने के लिए जज्बाती सहारे और किसी के पोषण की आवश्यकता होगी, जैसे मेरे लिए था। जब मैं पैदा हुई, मेरे माता पिता ने एक मैग्नोलिया चंपा का पेड़ बोया था ताकि मेरे शादी के दिन मैग्नोलिया के फूल रहे हमारे पूर्वजों के प्रोटेस्टेंट गिरजाघर में। मगर मेरे शादी के दिन ना तो मेरे बगल में मेरे माता पिता थे ना मैग्नोलिया फूल। क्योंकि मुझे गिरजाघर का सदस्य बने एक साल हुआ था, मैं सॉल्ट लेक शहर यूटा गए अपने मंदिर एंडोमेंट लेने और अपने मंगेतर डेविड से सील होने के लिए। जब मैं लुइजियाना छोड़ और यूटा के करीब पहुंच रही थी, बेघर होने का एहसास मुझे हुआ। शादी से पहले मैं डेविड की सौतेली नानी के साथ रहने वाली थी, जिसे प्यार से एंट कैरोल कहा जाता था। ये थी मैं, एक अजनबी यूटा में, एक अजनबी के घर रहकर अनंता के लिए सील होने जा रही थी, एक परिवार में जिन्हें मैं अच्छी तरह नहीं जानती थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं अपने होने वाले पति और प्रभु को प्रेम करती थी और उन पर भरोसा करती थी। जब मैं एंट कैरोल के घर के दरवाजे पर खड़ी थी, मुझे लगा कि मैं कहीं छुप जाऊं। दरवाजा खुला, मैं वहां एक डरी हुई खरगोश की तरह खड़ी थी और एंट कैरोल ने बिना कुछ कहे मुझे गले लगाया और अपने हाथ बाएं में लिया। वो जिसके पास अपना कोई संतान नहीं था, जानती थी उसका पोषण करने वाला दिल जानता था मुझे किसी का साथ चाहिए था। और उस क्षण का चैन की मिठास, मेरा डर गायब हो गया था और मुझे लगा मैं एक धार्मिक रूप से सुरक्षित जगह आ पहुंची हूँ। प्रेम का मतलब है अपने जीवन में किसी और के लिए जगह बनाना, जैसे एंट कैरोल ने मेरे लिए किया था। माताएं अपने शरीर में जगह बनाती हैं और उम्मीद है उनकी दिलों में भी जगह उनको बड़ा करने के लिए, एक आने वाले शिशु के लिए। मगर पोषण का मतलब तो सिर्फ पैदा करना नहीं है। ईव को बच्चों पैदा करने से पहले माँ कहा गया था और मैं विश्वास करती हूँ कि माँ बनना का अर्थ है जीवन देना। उन तमाम तरीकों की सोचो जिसे तुम जीवन देती हो। इसका मतलब है सकता है आशाहीन को देना या धार्मिक जीवन शकी को देना। पवित्र आत्मा की मदद से हम अंतर दिखे लोगों, ठुकराए लोगों और अजनबी के लिए चंगाई की जगह बना सकते हैं। इन दयालु पर शक्तिशाली तरीकों से हम परमेश्वर के राज्य बनाते हैं। बहनों, हम सब धरती पर आए इन जीवन देने, पोषण करने, मातृत्व के उपहारन के साथ, क्योंकि वही परमेश्वर का योजना है। उनके योजना पर चलना और राज्यों को बनाने वाले बनने के लिए निस्वार्थ बलिदान चाहे जब सब हम झेलते हैं और सहते हैं, खासकर जब हम शांति से सहते, हमारे दिलों को स्वच्छ करना है और हमें और दयालु और दानशील बनाता है, हमारे हृदय को साफ करता है और हमें और कोमल और दयालु बनाता है। और ये होता है परिश्रम और मुश्किलों से जरिए कि हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे सफ करने वाले मुश्किलें हमें मसीह के पास लाते हैं, जो हमें चंगा करता उद्धार के कार्य के लिए उपयोगी बनाता है। राज्य को बनाना उसकी ओर से बोलना और गाय देने से बनता है। हम तब भी राज्य को बनाते हैं जब हम सच्चाई की ओर से बोलते हैं और गवाही देते हैं। हम प्रभु की योजना अपनाते हैं। महिलाएं आमतौर पर बातें करना और बतौरना पसंद करते हैं। जब दिए गए पुरोहिती के अधिकार द्वारा काम करते हैं, हमारे बातें करना और बतौरना सुसमाचार सिखलाना और गवाही करना बन जाता है। बहन जूली बी बैग, जो सहायक संस्था की मध्य अध्यक्ष रह चुकी है, ने सिखलाए व्यक्तिगत प्रकट होने की क्रिया के लिए योग्य होने, उसे हासिल करना और उस पर अमल करना आवश्यक निपुणता है जो इस जीवन में हासिल किया जा सकता है। इसके लिए एक जरूर जागरूक कोशिश चाहिए। पवित्र आत्मा से निजी प्रकटीकरण हमें आनंद सच्चाई उदार करते के सच्चाई को सीखने बोलने और आजमाने को उकसाएगा। हम जितना मसीह के मार्ग अपनाएंगे, उतना ही हम उनके प्रेम और निर्देशन को महसूस करेंगे। हम जितना उनके प्रेम और निर्देशन को महसूस करेंगे, उतना हम उनके जैसे सच्चाई सिखलाने की इच्छा करेंगे, तब भी जब विरोध का सामना होता है। कुछ साल पहले मैंने प्रार्थना किया था मातृत्व को बनाए रखने के लिए, जब मुझे एक अनजाना फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने पूछा, क्या तुम नील मैरियट हो, बड़े परिवार की माँ? मैंने खुशी से हाँ कहा, इस आशा से कि वो कहेगी, अच्छा, ये बढ़िया है। मगर नहीं, मैं उसका चिरचिरता जवाब फोन पर कभी नहीं भूलूंगी। मुझे अफसोस है कि तुम इस भीड़भाड़ वाले दुनिया में बच्चे ला रही हो। ओ, मैंने लड़काते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम कैसे महसूस करती हो। उसने गुस्सा से कहा, नहीं, तुम नहीं जानती। तब मैं रोने जैसी आवाज में बोली, अच्छा, तो मैं नहीं जानती। वो गुस्सा में भगती गए कि मेरा माँ बनने का चुनाव बेवकूफी थी। जब वो बोल रही थी, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और एक शांत विचार मेरे मन में आया, प्रभु इनसे क्या कहता। मुझे एहसास हुआ कि मैं सही कर रही हूँ और मुझे हिम्मत मिला यीशु मसीह को याद करके। मैंने कहा, मैं खुश हूँ कि मैं एक माँ हूँ और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं वो सब कुछ करूँगी जो मेरे बस में है, ताकि मेरे बच्चों का पोषण ऐसा हो कि वो दुनिया को बेहतर जगह बना सके। उसने जवाब दिया, अच्छा, मुझे ऐसा आशा है तुम वो करोगी, और फोन रख दिया। ये बड़ी बात नहीं थी। वैसे तो मैं तो अपने रसोई में सुरक्षित खड़ी थी, मगर मेरे अपने छोटी तरीके से मैं परिवार माताओं और पोषणकर्ताओं की ओर से बोल सकती थी, क्योंकि मैं परिवार पर परमेश्वर के सिद्धांत को समझती और उसमें विश्वास करती थी, और मैं इस सच्चाई को बयान करने के लिए प्रार्थना की थी। दुनिया की महिलाओं से न्यारा और अलग बनने से कुछ आलोचना मिलेगी, मगर हमें खुद को अनंत सिद्धांतों में मजबूत करना है, उनकी गवाही देना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब हम खुद से पूछते हैं, हम क्या करें, हम ये सवाल करें, उदारकर्ता लगातार क्या करता है? वो पोषण करता है, वो बनाता है, वो बदांति और अच्छाई को प्रोत्साहित करता है। महिलाएं और बहनों, हम ये सब कर सकते हैं। प्राथमिक की लड़कियों, क्या तुम्हारे परिवार में कोई तुम्हारे प्रेम और दया चाहता है? तुम औरों का पोषण करके राज्य को बना सकते हो। उदारकर्ता का धरती को बनाना अपने पिता के निर्देशन में एक शक्तिशाली उदाहरण था पोषण का। उसने हमारे बदांति और विश्वास को विकसित करने के लिए एक जगह तैयार किया, अपने प्रायश्चित की शक्ति से चंगाई और आशा बदांति और लक्ष्य के अंतिम जगह है यीशु मसीह और उनके प्रायश्चित में विश्वास। हम सबको एक धार्मिक और शारीरिक तरफ रहती है कि इसी के साथ के जगह का हम हर उम्र का बहन या जगह बना सकते हैं। ये एक पवित्र जगह है। हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आज्ञाकारी महिला बनना, प्रेरणा से पोषण करना और सच्चाई को बिना डर के जीना। जब हम स्वर्ग के पिता से उनके राज्य के बनाने वाले बनने की मांग करते हैं, उनकी शक्ति हम में और हम पोषण करने जान जाएंगे और अंत में अपने स्वर्ग के माता पिता जैसे बनेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखो तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे लिए चेले हो।
हमारे सब समाज में चीज हैं जहां मनुष्य को हमारी जरूरत है कि हम उनकी जरूरत है और वो हमारे। मेरे दोस्त ने कहा, अरे मेरे कई परिवारों कामदिशक हैं और मैंने उनका मदद करनी चाहती हूँ। मुझे याद है जब मैंने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया और भूखे पेट से सोई। अंत में हमने 5 सालों में गिनी कैंप में रहने लगे। जब मैंने फचो को पहले मिला था, वो बहुत ही सदय और शर्मीली थी। मुझे पता नहीं था कि एक अर्थपूर्ण रिश्ता कायम कर सकेंगे कि नहीं। मैं सोचती हूँ, जब मैं हाई स्कूल में थी, मैंने क्रॉस कंट्री दौड़ में भाग लिया और ये मेरे जुनून था। फतू को दौड़ने में दिलचस्पी थी और वो उसमें बहुत अच्छी थी। मैं जानती थी कि उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर टोनी नहीं होती, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ होती। वो मुझे सिर्फ दौड़ने में सहायता देती नहीं, उसने सभी चीज़ों जो मैंने किया उसमें मुझे सहायता दी। मैं मॉर्मन हूँ और फतू एक मुसलमान। मुझे लगता है कि हमको दूसरे सहायता पहुँचाते हैं जैसे हम परमेश्वर के संबंधित होते हैं। आप जानते नहीं, मगर जैसे कि आपने एक बहुत बहुत बड़ा प्रभाव डाला है मेरे जीवन में। वो चाहे मैं जहाँ कहीं हूँ और चाहे किसी दौर से गुजर रही हूँ। अफश्य फातू, मैं आपसे प्यार करती हूँ। उसने मुझे अभी बताया कि मेरे वहाँ होने उसके लिए कितना महत्व है। मेरे भावना उभरने लगी है एहसास कर के कि आपको पता नहीं जैसे उसने मेरे जीवन में बदलाव किया है। मैं किसी और के लिए वही करना चाहती हूँ। हमारे पास परमेश्वर द्वारा दिए गए हो आत्मा है जो लोगों को साथ लाता है।
तब धार्मिक उसको उत्तर देंगे, ए प्रभु, हमने कब तुम्हें भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हम तब राजा ने उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के एक साथ किया, वो मेरे ही साथ किया।
On the day Relief Society was organized,
जिस दिन सहायक संस्था का स्थापना हुआ, एमा सिथ ने घोषणा किया, हम कुछ विशेष करने जा रहे हैं। हम विशेष हालातों और ज़रूरी सहायता के आदेश की उम्मीद रखते हैं। वो ज़रूरी सहायता के आदेश और विशेष हालातें उस समय ज़्यादातर घटी थी जैसे आज घटती थी। एक आदेश आया अक्टूबर 1856 के महासम्मेलन के दौरान, जब प्रधान ब्रिगम यंग ने सभा से घोषणा की थी कि हाथ गाड़ी वाले अगले का 100 किलोमीटर दूर में फंसे हुए थे। उसने घोषणा की, तुम्हारा विश्वास धर्म और धर्म की बातें हमारे परमेश्वर के राज्य में एक भी आत्मा को नहीं बचा पाएगा जब तक तुम इन सिद्धांतों को ना पूरा करोगे जो मैं अर्थ में सिखला रहा हूँ। जाओ और उन लोगों को जो प्लेन्स पर हैं को यहाँ लाओ और उन चीजों पर खास ध्यान दो जिसे हम संसार कहते हैं, वरना तुम्हारा विश्वास व्यर्थ जाएगा। हम उन पुरुषों को आभारी प्रशंसा से याद करते हैं जिन्होंने बड़ी निजी जोखिम का सामान करके बर्फ में निकाल पड़े थे। बहन लूसी मिस्टर स्मिथ ने लिखा था कि प्रधान यंग ने उपदेश के बाद जो वहां मौजूद थे क्रिया में लगे। महिलाओं ने अपने स्कर्ट के नीचे वाले स्लिप्स को बड़े भारी नीचे के स्कर्ट थे उसे जमाने के पहनाने उन्हें ठंड न लगने के लिए थे निकाले और मोजे और अन्य जो कुछ उनसे बनता था उसी टैबरनेकल और उसी गाड़ियों में डाले पहाड़ों के उस पार संतों के लिए। कई हफ्तों बाद प्रधान ब्रिगम यंग ने संतों को फिर से पुराने टैबरनेकल में सम्मिलित किए जब बचाने वाले और हाथ गाड़ी के लोग सॉल्ट लेक शहर के करीब पहुंच रहे थे। बहुत निवेदन करके उसने संतों से जरूरी बात कही, खासकर बहनों से कि वे पीड़ित लोगों को ख्याल करें, भोजन दें, उन्हें अपनाए। ये कहते हुए आप पाएंगे कि उनमें कुछ लोगों की पैर आदि तहक ठंड से अकट गए होंगे, कुछ के जो घुटनों तक अकट गए होंगे और कुछ के दो हाथ में बर्फ जम गए होंगे। हम चाहते हैं कि तुम उन्हें अपने बच्चों जैसे अपनाओ। लूसी बिजर्स ने भी लिखा, हमने अपनी शक्ति अनुसार सब कुछ किया, अच्छे भाइयों और बहनों की मदद से, जरूरतमंद को सहूलतों से के लिए। उनके हाथ और पांव बुरी तरह से बर्फ से जम गए थे। हमने अपनी कोशिशें बंद नहीं की जब तक सबको आराम न मिला। मुझे किसी और काम में इतनी संतुष्टि और सुख नहीं मिला था जीवन भर में, क्योंकि एकता के एहसास सब में था। आगे क्या होगा स्वीकृति हाथों को करने के लिए। मेरे प्रिय बहनों, इस कहानी को हमारे समय से तुलना किया जा सकता है जो और उन पर जो दुनिया भर में पीड़ित है। एक और विशेष हालात हमारे हृदयों को प्रेरित करता है। 60 मिलियन से ज्यादा शरणागत हैं जिसमें जबर निकालने गए हैं दुनिया भर में। उनमें से आधा संख्या तो बच्चों की है। इन लोगों ने बड़ी मुश्किलें झेली है और नए देशों और संस्कृतियों में नया शुरुआत कर रहे हैं। जबकि कभी कभी संस्थाएं होती हैं उन्हें रहने के जगह और आम जरूरतों से मदद करने के लिए उन्हें एक दोस्त और सहायक की जरूरत रहती है जो उससे उनके नए घर की आदत डलाने में मदद करे या एक व्यक्ति को उन्हें भाषा सिखलाए, उनके तरीकों को समझे और उनके साथ महसूस करे। पिछली गर्मी की छुट्टियों में मैं बहन व्यत बुगिंगो से मिली जो 11 की उम्र में जगह जगह भागती रही जब उसका पिता और 3 भाई दुनिया के युद्ध वाले इलाके में गायब हो गए थे। ये व्यत और बाकी के परिवार सदस्य 6 और आधा वर्ष पड़ोस के देश में शरणार्थी के रूप में रहे थे जब तक उन्हें अपना घर ना मिल गया जहां उनकी मदद के अच्छा दंपति ने की जिन्होंने सौरी पाठशाला और अन्य चीजें दी। उसने कहा कि वो हमारे प्रार्थनाओं के जवाब थे। इन सुंदर महिलाओं से मिलने के बाद मैंने क्या ही बार सोचा है कैसा होता अगर उनकी कहानी मेरी कहानी होती। हम बहने स्वर्ग के पिता के बच्चों को मदद करने के लिए प्रभु के भंडार को आधा बांटते हैं। उनका भंडार सिर्फ सम्मानों से नहीं बढ़ता पर समय, बुद्धि, गुण और हमारे दिव्य प्रकृति से भी। बोहन रोजमेरी एम विक्सम ने सिखलाया है, हमारे अंदर के दिव्य प्रकृति हमारे शौक को जगाता है औरों तक पहुंचने और कुछ करने के लिए। ये पहचान कर कि हमारा दिव्य प्रकृति है सेवा करने हार। प्रधान रसल एम नेल्सन ने बतलाए, हमें उन महिलाओं की जरूरत है जो जानते हैं कि जरूरी कार्य कैसे किया जाता है, उनके विश्वास के कार्य और उन द्वारा जो नैतिकता और पापी दुनिया से परिवारों के रक्षक है। महिलाओं जो जानती है कैसे स्वर्ग के शक्तियों को पुकारा जाए बच्चों और परिवारों को सुरक्षित रखने और मजबूत करने के। विवाहित या अविवाहित तुम बहनों को अनोखे काबिलियत और खास अंतर्ज्ञान है जो तुमने परमेश्वर से ऊपर में पाया है। अक्टूबर 27, 2015 को प्रथम अध्यक्षता ने गिरजाघर को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने चिंता व्यक्त और दया व्यक्त किया उन कई महिलाओं लोगों के लिए जिन्हें अपने घरों से भगाने परादेश में लड़ाई और अन्य मुश्किलों के कारण। मतलब अध्यक्षता ने लोगों, परिवारों, गिरजाघर के विभागों से निवेदन किया कि वो मसीह जैसा ढंग से स्थानीय सहायता करे में सेवा प्रदान करे। सहायक संस्था जवान महिलाओं प्राथमिक के महाअध्यक्षों ने सोच लिया है कैसे प्रथम अध्यक्षता से के निवेदन पर अमल किया जाए। हमें जानता है हम जानते हैं कि आप हमारे सबसे प्रिय बहनें सभी उम्र के सभी तरह के हालात के और विभिन्न परिस्थितियों में रहते हो। हम में से किसी को भी अपनी शक्ति से अधिक तेज दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा था कि इस विश्वास भर से संतों ने बहन नापा का हर सदस्य ने बैप्टिज्म पर वचन लिया था कि उन्हें दिलासा देंगे जिन्हें दिलासा की जरूरत है। इन सच्चाइयों को ध्यान में रखकर हम एक सहायता कर आयोजित किया है जिसको मैं एक परदेसी था। यह हमारी उम्मीद है प्रार्थनाशील से जानना चाहो क्या करना है तुम्हारे समय और परिस्थितियों के अनुसार मसीहा जैसे प्रधान सेवा करने के और यही एक तरीका है बचाने सेवा कर सकती है। हमारे सभी प्रार्थनाशील कोशिशों में हमें राजा बेंजामिन का ज्ञानी सलाह लेना है जो उनके लोगों को दिया था गया था जब उन्होंने जरूरतमंद को देखभाल करने को कहा गया था। देखो ये सब बताते विवेक और व्यवस्था के अनुसार की जानी चाहिए। बहनों हम जानते हैं कि प्रभु प्रसन्न करता है औरों की मदद करना। इन धर्मशास्त्र के आदेशों के विषय में सोचो। जो परदेसी तुम्हारे संग रहे वो तुम्हारे लिए देसी के समान हो और उनसे अपने ही समान प्रेम रखना। मत भूलो अजनबियों को खातिरदारी की क्योंकि इसके द्वारा कितने ने अनजाने स्वर्गदूतों को खातिरदारी थी। और उदारकर्ता ने कहा क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाया। उदारकर्ता ने उस विधवा की प्यार से प्रशंसा किया जिसका धान सिर्फ दो दमिद्यक था। उसने अच्छे समर्थन का किस्सा बतलाया जिसका अंत उन्होंने इस वाक्य से कहा जब और तू भी क्या ऐसा भी कर। कभी कभी मदद करने से असुविधा होती है मगर जब हम एक साथ काम करेंगे प्रेम और एकता से हम स्वर्ग की सहायता की आशा कर सकते हैं। परमेश्वर की उत्कर्ष बेटी की फ्यूनरल के दौरान किसी ने बोला कि ये बहन ने एक स्टेक सहायक संस्था अध्यक्ष के रूप में अपने स्टेक के अन्य लोगों के साथ मिलकर कंबल बनाए थे खोसोवो के पीड़ित लोगों के दिनों के लिए 1990s में और अच्छे समर्थन की तरह उन्होंने अपनी शक्ति अनुसार किया। जब वो और उसकी बेटी ने क्विल्ट से लदी गाड़ी लंदन से कोसोवो चलाकर ले गए। घर लौटने की रास्ते में उसके एक स्पष्ट धार्मिक प्रेरणा मिली जो उसके हृदय में बस गई। वो प्रेरणा ये था जो तुमने किया है वो बहुत अच्छी बात है, अब घर जाओ रास्ते को पार करो और अपने पड़ोसी की सेवा करो। फ्यूनर में अन्य प्रेरणा बड़े वाक्य थे कि कैसे इस विश्वासी महिला ने जरूरी सहायता के आदेश को पहचाना और उसके अनुसार कार्य किया और साधारण हालातों में भी अपने आसपास को लोगों के उदाहरण के लिए उसने कष्ट में पड़े जीवन जवान लोगों के लिए अपना घर उपलब्ध किया किसी भी घंटे पर दिन या रात को। मेरे प्रिय बहनों हमें स्वर्ग के पिता की मदद जरूर मिलेगी जब हम अपने घुटनों पर होकर और दिव्य आदेश मांगेंगे। उनके बच्चों के लिए स्वर्ग के पिता हमारे उदारकर्ता यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तैयार कर सहायता देने के लिए। प्रधान हेनरी बी आयर ने अपने शक्तिशाली गवाही दिया, स्वर्ग का पिता तुम्हारे विश्वास की प्रार्थना को सुनता और जवाब देता है जो तुम मार्गदर्शन और मदद के लिए करते हो उनके सेवा में। पवित्र आत्मा तुम्हारे पास भेजी जाती है और जिनकी तुम्हारी देखभाल करते हो तुमने शक्ति मिलेगी और तुम्हें प्रेरित होगी अपने सीमा और सेवा देने के क्षमता को जाने के लिए। आत्मा तुम्हें सहानुभूति देगा जब तुम चिंतित रहोगी क्या मैंने पर्याप्त किया है। जब हम उन लोगों के जरूरी सहायता के आदेश के बारे में सोचते हैं तो उन हमारी जरूरत है। आओ हम खुद से पूछें कैसा होता अगर उनकी कहानी मेरी कहानी होती। इसके बाद ठीक हमें प्रेरणा ढूंढना है प्राप्त हुआ जल क्योंकि अमल में आना है और एकता से साथ आगे बढ़ना है। शायद तब हमारे बारे में कहा जाएगा जैसे उदारकर्ता ने एक प्यारी बहन ने कहा मैं मिले उसने तो मेरे साथ भलाई की है जो कुछ वो कर सके उसने किया। मैं इस विशेष कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन।
सिस्टर्स हम आपकी हार्दिक धन्यवाद देते हैं तुम सबको जो आपने हमारे साथ आज शाम बिताया है। हम गायक मंडली और दूसरों को धन्यवाद देते हैं उनके संगीत प्रदान करने के लिए और आभारी हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी तरह इस संचालन में हाथ बटाया है।
गायक मंडली अब गाएगी कम फॉलो मी चलो पर साथ होगा होंगे एलिजाबेथ मार्श. हमारे साथ इस सभा की आखिरी भाषणकर्ता प्रधान हेनरी बी आयरिंग होंगे. प्रधान आयरिंग के भाषण के बाद गायक मंडली गाएगी मोर होलीनेस गिव मी के पहले दो वर्स. सभा गायक मंडली के साथ तीसरा वर्स निर्देशक की इशारे पर गाएंगे. अंतिम प्रार्थना तब सौखनी पार्कों के एक सहायक संस्था बहन जॉर्डन रिवर कोलंबिया कंबोडियन ब्रांच सॉल्ट ग्रेंजर नॉर्थ स्टेक के हैं द्वारा दी जाएगा.
I am grateful to be with you.
मैं आभारी हूँ आप सब के साथ के लिए इस भक्ति जल की और वफा के शाम में हमने एक साथ प्रार्थना की है हमारे प्यारे भरे स्वर्ग के पिता ने हमें सुना है हमने अपने उद्धारकर्ता को याद किया प्रभु यीशु मसीह को जब हम उनके प्रशंसा के गीतों से प्रेरित हुए थे हमको प्रेरणा मिली है कि हम अपने स्वामी को उनके कार्य में हमारे स्वर्ग के पिता के बच्चों को मदद और आराम देने के लिए सहायता करें औरों की सेवा करने की हमारी इच्छा दूंगी हो जाती है जब हम उद्धारकर्ता के प्रति आभारी होती है इसीलिए हमारे हृदय खुशी से फूल जाते हैं जब हम because I have been given much, I too must give गीत को बोल को गाते हैं राजा बेंजामिन ने अपने मोमन धर्म शास्त्र में दर्ज महान भाषण में अबर के इस एहसास का वादा किया था जब यीशु मसीह हमारे विश्वास हमें उनके माफ़ी का हकदार बनाता है हमारे अंदर इच्छा होती है उनके लिए औरों के सेवा करने के राजा बेंजामिन ने सिखलाया कि माफ़ी एक ही जन में नहीं दिया जाता उसने ऐसा कहा और अब उन बातों के लिए जो मैंने तुमसे कही है यदि दिन प्रतिदिन अपने पापों को जमा करवाने की बात को बरकरार रखने के लिए ताकि तुम परमेश्वर के पास निर्दोष जा सके मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी परिस्थिति के अनुसार गरीबों को अपने वस्तुओं को दो जैसे भूखों को भोजन देना रोगियों को देखने जाना और उनकी आत्मिक और शारीरिक दिलासा के लिए उनकी आवश्यकताओं को अनुसार सहायता पहुँचाना आलमा के साथी अमलक ने भी सच्चाई सिखलाया कि हमें माफ़ी के लिए उनके सेवा को जारी रखना है और आप देखो मेरे प्यारे भाइयों मैं तुमसे कहता हूँ मत मानो कि ये सब कुछ है क्योंकि इस सारी चीज़ों को कर लेने के बाद यदि तुम ज़रूरतमंद और बस्त्राहीन लोगों से मुँह फेरोगे और बीमार और खस्त में पड़े हुए लोगों से नहीं मिलोगे और यदि तुम्हारे पास बताए हैं जिसे तुम उन लोगों को नहीं दोगे जिनके इनकी आवश्यकता है मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम इन में से किसी भी चीज़ों को नहीं दोगे देखो तुम्हारे प्रार्थना व्यर्थ है मैंने आज रात मेरे जीवन के महिलाओं के बारे में सोचा है हमारे पर्व में 31 महिलाएं और लड़कियां हैं मेरे पत्नी से गिनते हुए और हमारे तीन सबसे नहीं पर पोतियों तक इनमें से कुछ आज हमारे साथ है ये हर एक सब के अपने अलग अलग यादें ले जाएंगी और हम उनमें से अपने खुद के प्रतिज्ञा करेंगे तीन यादें और तीन प्रतिज्ञान है जो मैं आशा करता हूँ उनके जीवन भर और आगे तक उनके साथ रहे ये यादें एहसास की है सबसे महत्वपूर्ण एहसास है प्यार तुम्हें उन महान बहन नेताओं के प्यार को उनके भाषण द्वारा महसूस किया है और तुमने आत्मा को महसूस किया है जो बिना तुम्हें जाने तुमसे प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने स्वर्ग के पिता और उद्धारकर्ता के प्रेम को तुम्हारे लिए महसूस किया है इसीलिए वो तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम परमेश्वर के आशीर्वाद पाओ तुमने औरों के लिए प्यार महसूस किया है दोस्तों स्कूल के साथी पड़ोसियों और उनके लिए जो हाल में तुम्हारे जीवन में आया एक परदेसी वो प्यार परमेश्वर की एक उपहार है धर्मशास्त्र उसे उदारता और मसीह का सच्चा प्रेम कहता है तुम्हें उस प्रेम को आज रात महसूस किया है और तुम उसे अक्सर पर सकते हैं वो अगर तुम उसे ढूंढो एक दूसरा एहसास जो तुम्हें आज पाया है वो है पवित्र आत्मा बहनों ने तुमसे आज वादा किया कि पवित्र आत्मा तुम्हें मार्ग दिखाएंगे उस सेवा तक जो प्रभु चाहता है. तुम्हें आत्मा द्वारा महसूस किया है कि उनका वादा प्रभु की ओर सेता और वो सच है. प्रभु ने कहा कि हमें अपना भरोसा उनके आत्मा पर रखना चाहिए जो अच्छा करवाता है, हाँ नहीं करवाता, विनम्र खड़े सिखाता है और सच्चाई के साथ निर्णय बनवाता है, और ये मेरी आत्मा है. शायद तुम्हें उस आशीर्वाद को आज रात पाया है जिसे कि एक नाम या चेहरा किसी का जो ज़रूरतमंद है तुम्हें देखा होगा. शायद वो फिर सिर्फ एक उड़ता खाया होगा, मगर क्योंकि आज रात आपने ये सुना, आप इसके बारे में प्रार्थना करेंगे उसे भरोसा के साथ कि परमेश्वर तुम्हें अच्छाई करवाएंगे उनके लिए. जब ऐसा प्रार्थनाएं तुम्हारे जीवन का भाग बन जाते हैं, तुम और अन्य लोग बेहतर के लिए बदल जाएंगे. जो तीसरा एहसास आज रात आपको हुआ है वो है कि तुम उद्धारकर्ता के करीब रहना चाहते हैं. यहाँ पर मौजूद सबसे छोटी लड़की की ने भी इस गीत के निमंत्रण की सच्चाई, Come follow me, the Savior said, then let us in his footsteps tread. अब इन ऐसाओं के साथ जो पहला कार्य तुम्हारे प्रतिक्रिया करनी है कि तुम जाओ और सेवा करो. जब तुम उदारकर्ता के लिए किसी को आराम और सेवा देने जाओगे, वो मार्ग तैयार करेंगे तुम्हारे लिए. जैसे तुम्हें आज रात के लौटे हुए प्रचारक बतलाएंगे, उसका मतलब ये नहीं कि हर दरवाजे के पीछे का कर व्यक्ति तुम्हारे स्वागत करेगा या कि हर कोई जिसमें सेवा करोगे वो आभारी होगा, मगर प्रभु तुम्हारे आगे जाएगा रास्ता तैयार करने के लिए. बहुत बार प्रधानमंत्री ने कहा और जो तुम्हें अपनाएंगे वहाँ मैं भी रहूँगा, क्योंकि मैं तुमसे आगे जाऊँगा, मैं तुम्हारे दाएं और बाएं और रहूँगा, और मेरे आत्मा तुम्हारे हृदय में रहेगा, और मेरे देवदूत तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हें संभालने के लिए. एक तरह से सब जब वो तुम्हारे आगे जाता है, वो उस व्यक्ति के हृदय को तैयार करता है जिसके पास उसने तुम्हें भेजा सेवा के लिए, वो तुम्हारा हृदय भी तैयार करेगा. तुम ये पाओगे कि प्रभु तुम्हारे लिए शाखियों को देता है, तुम्हारे दाएं, तुम्हारे बाएं और सभी हो. तुम्हें अकेले नहीं जाते उनके लिए, औरों की सेवा करने के लिए. उसने ऐसा मेरे लिए आज रात किया. प्रभु ने मेरे लिए गवाहों का जन तैयार किया दोनों शब्दों और संगीत में, ताकि वो जो चाहता था कि मैं कहूँ. मुझे सिर्फ एक देखना था कि मेरा संदेश उनके अंदर संदेश का भाग जाए. मैं आशा और प्रार्थना करता हूँ कि तुम आभार और खुशी महसूस करेंगे जब प्रभु तुम्हें औरों के संग रखेगा उनके लिए सेवा के क्षेत्र, जब तुम्हें यह अनुभव अक्सर होगा और तुम याद करेंगे, मुस्कुराओगे जैसे मैं करता हूँ जब भी हम स्वीट इज द वर्क गाते हैं. तुम जब इस वर्स को पढ़ोगे तब भी मुस्कुराओगे. तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम जो मेरे ही छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक से साथ किया वो मेरे ही साथ किया. जो दूसरा कार्य तुम्हें करना है वो है प्रभु को याद रखना जब तुम उनके लिए सेवा माने जाओगे. प्रभु ने सिर्फ तुम्हारे आगे जाता और तो देवदूतों को हमारे साथ सेवा करने भेजता. परमेश्वर की हर पुत्री जो इस सभा को के संदेशों को सुनेगी और उस पर विश्वास करेगी ये पूछेगी, प्रभु क्या चाहता है कि मैं करूं? हर एक बहन की स्थिति अलग है. यह सच है मेरे पुत्रियों, बहुओं, पोतियों, नातियों और पर पोतियों के छोटे टोली के लिए, उनके लिए और स्वर्ग के पिता के सभी पुत्रियों के लिए. मैं बहन लिंडा के बर्टन का ज्ञान पर सलाह दोहराऊंगा. उसने चाहा कि तुम विश्वास से प्रार्थना करो, और फिर उसने तुम्हें वो याद वादा दिया खुद प्रभु के मिलते आराम का उस औरत के लिए जो दिखाई गई तो उनके सिर पर महंगा तेल उंडलने के लिए और यीशु ने कहा उसे छोड़ दो उसे क्यों सताते हो उसने तो मेरे साथ भलाई की है कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो उनसे भलाई कर सकते हो जो कुछ वो कर सकी उसने किया उसने मेरी घर जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इतरा माला है मैंने तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जाल के सस्मचार प्रचार की जाएगी वहाँ उसके काम से सस्मचार भी उसके स्मरण में जाएगी वो छोटा शस्त्र सबसे अच्छा सलाह ही प्रभु के राज्य के विश्वास भयनों के लिए इस आशांत समय में और तुम्हें जानती कि बड़ाई की इच्छा या जरूरत नहीं पड़ेगा जैसा शस्त्र के उदाहरण की महिला ने किया जिसका पवित्र कार्य याद है पर नाम नहीं मेरी आशा है कि हमारे परिवार की बहनें अपने बस में वो सब करेगी परमेश्वर के प्रेम के कारण जरूरतमंद की सेवा के लिए मगर जो तीसरे बात जिसकी मैं आशा करता हूँ वो करेंगे है कि वो अपने अच्छे कार्यों का ऐलान नहीं रखेंगे मैं प्रार्थना करता हूँ सावधान रहो कि हम मनुष्य के दिखलाने के लिए अपने धर्म के काम का ना करो नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ फल नहीं पाओगे फिर वो कहा परंतु जब तुम दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा भाई हाथ ना जाने पाए ताकि तेरे दान गुप्त रहे मेरे प्रार्थना इस राज्य के बहनों के लिए ये है कि जहाँ कहीं वो रहे या जिस किसी परिस्थिति में उनका उद्धारकर्ता और उनके प्रशित में विश्वास उन्हें हो जब करवाए जो प्रभु उनकी सेवा से चाहता है जब वो करेंगे मैं वादा करता हूँ कि वो और पवित्र महिलाएं बनेंगे जिन्हें उद्धारकर्ता और हमारे स्वर्ग के पिता स्नेह से स्वागत करेंगे और खुल कर आशीष देंगे मैं गवाही देता हूँ यह पुनर्जीवित यीशु मसीह का गिरजाघर है यीशु मसीह जीवित है थॉमस प्रेजेंट थॉमस मॉन्सन उनका जीवित भविष्यवक्ता है स्वर्ग का पिता हमारे प्रार्थनाओं को सुनता और जवाब देता है मैं गवाही देता हूँ कि हम उदारकर्ता के करीब पहुँचते हैं जब हम शुद्ध प्रेम करते उनके लिए औरों की सेवा करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन
हमारे प्रिय पिता, हम आज शाम को आभारी हैं हम इस वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के लिए। हम अपने भाषण देने वाले के लिए बहुत आभारी हैं। हम आभारी हैं आपके चर्च के लिए अपने जिंदगी में। पिता, हम आशा करते हैं कि आप प्रधान मॉन्सन और उनके काउंसलर को कि वे हम बहुत आभारी हैं हर चीज के लिए हम अपनी जिंदगी में। और अगले हफ्ते के लिए जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए हम वेट कर रहे हैं। जैसे हम अभी यहाँ से घर जाएंगे, हमारा ध्यान रखें। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।